गाज़ा, नरसंहार के 800 दिन। अल्लाह आकाशों और धरती का प्रकाश है। उसके प्रकाश का उदाहरण ऐसा है जैसे एक आली में एक दीपक हो, दीपक एक शीशे में हो, वह शीशा मानो चमकता हुआ तारा हो, जो एक मुबारक जैतून के पेड़ से जलाया गया हो, जो न पूरब का हो न पश्चिम का, जिसका तेल आप ही आप चमकने लगे भले ही आग उसे न छुई। प्रकाश पर प्रकाश। कुरान सूरह अन-नूर रात के 12:35। 1945 के बाद दुनिया ने जो सबसे लंबी और सबसे अंधेरी रात देखी है, उसमें गाज़ा के 20 लाख लोग वह दीपक बन गए। ठीक 800 दिनों से गाज़ा के आसमान में आग बरस रही है। 800 रातों से धरती 2 लाख टन विस्फोटकों से थरथरा रही है। 800 सुबहों से मंत्री कैमरे के सामने बिना शर्म के दोहराते रहे कि एक दाना गेहूं, एक बूंद दवा, एक लीटर ईंधन भी 20 लाख इंसानों तक नहीं पहुँचने दिया जाएगा। फिर भी वह प्रकाश बुझा नहीं। मानवीय पीड़ा का एक नया मानदंड। 1945 के बाद के पूरे युग में पृथ्वी पर किसी भी नागरिक आबादी को इतने लंबे समय, इतनी तीव्रता और इतने जानबूझकर किए गए अभाव का ऐसा संयोजन नहीं झेलना पड़ा जैसा अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2025 तक गाज़ा पट्टी में फंसे 23 लाख लोगों को झेलना पड़ा। 8,000 लगातार दिन पूर्ण या लगभग पूर्ण घेराबंदी। टन विस्फोटक गिराए गए, हिरोशिमा आकार के 15 परमाणु बमों के बराबर 80% घर पूरी तरह या गंभीर रूप से नष्ट। मानव निर्मित अकाल जो कई प्रांतों में आईपीसी फेज 5 विनाशकारी तक पहुंच गया। पूरे नागरिक आबादी को युद्ध के हथियार के रूप में जानबूझकर भुखमरी। स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता और शिक्षा व्यवस्था का लगभग पूर्ण विनाश। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के हर मापदंड से गाज़ा ने केवल मानवीय संकट नहीं झेला, उसे ऐसी परिस्थितियों में धकेला गया जो मानव अस्तित्व की सीमाओं को ही चुनौती देती हैं। फिर भी हर तर्कसंगत उम्मीद के विपरीत अधिकांश लोग अभी भी जीवित हैं। यह तथ्य अपने आप में हमारे सदी का सबसे शांत चमत्कार है। प्रकाश पर प्रकाश। हर अकाल पूर्वानुमान, हर सार्वजनिक स्वास्थ्य सिमुलेशन, विश्व खाद्य कार्यक्रम और आईपीसी के हर भयावह स्प्रेडशीट ने एक ही बात कही थी, इतने कम कैलोरी के स्तर पर इतने लंबे समय तक बिना चिकित्सा व्यवस्था और साफ पानी के पूरे समाज में मृत्यु दर समाज विनाशकारी स्तर तक पहुँच जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं हुआ। इसलिए नहीं कि पीड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी, वह मॉडल्स की कल्पना से भी बदतर थी। लेकिन मॉडल्स ने उस कौम को हिसाब में नहीं लिया जिसने शांत और अटूट यकीन के साथ फैसला किया कि उसका वजूद ही प्रतिरोध होगा। 4 दिन से न खाने वाली माँ के स्तनों में फिर भी बच्चे के लिए दूध आया, अपने शरीर को खुद खाते हुए भी उसने जीवन आगे बढ़ाया। जिस सर्जन ने रसोई के चाकू और मोबाइल टॉर्च की रोशनी में 6 साल के बच्चे की टांग काटी, वह बार बार फुसफुसाता रहा तो बहादुर है हबीबी, जब तक बच्चे की सिसकियां ही एकमात्र एनेस्थीसिया न बन गईं। एक टेंट में 20 अजनबी एक डिब्बा बीन्स बांटते हैं, हर कोई एक चम्मच लेता है ताकि बच्चों को 2 मिल सके। बलाहिया का बूढ़ा जिसका घर तीसरी बार बम से उड़ा, उसने गड्ढे में टमाटर के बीज बोए क्योंकि मरने से पहले यहाँ कुछ हरा उगना चाहिए। वह किशोर जिसने अपनी लकवाग्रस्त दादी को 14 किलोमीटर पीठ पर उठाया और रास्ते भर उसे उस समुद्र की कहानियां सुनाता रहा जिसे वह अब देख नहीं सकती थी ताकि रास्ते में उम्मीद न टूटे। ये वीरतापूर्ण अपवाद नहीं थे, यही नियम थे। कानूनी ढांचा, 3 समवर्ती व्यवस्थाओं का एक साथ साथ उल्लंघन। नीचे दिए तीनों कानूनी व्यवस्थाओं का उल्लंघन 2 साल से अधिक समय तक रोजाना हुआ। जेनेवा कन्वेंशन 4, 1949, युद्धकाल में नागरिकों की सुरक्षा। अनुच्छेद 23, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और माताओं के लिए भोजन, दवा और कपड़े के मुक्त मार्ग की बाध्यता, 9 अक्टूबर 2023 से लगातार उल्लंघन। अनुच्छेद 55, कब्जा करने वाली शक्ति को उपलब्ध साधनों से अधिकतम भोजन और चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करना, निरंतर उल्लंघन, भले ही 2021 के ICJ और इसराइली हाई कोर्ट के फैसलों ने गाज़ा पर प्रभावी नियंत्रण की पुष्टि की हो। अनुच्छेद 56, चिकित्सा और अस्पताल सेवाओं को बनाए रखने का कर्तव्य, उत्तरी गाज़ा के हर अस्पताल पर व्यवस्थित हमले और ईंधन, ऑक्सीजन, दवाओं के जानबूझकर इनकार से उल्लंघन। अनुच्छेद 33, सामूहिक दंड का निषेध, पूर्ण घेराबंदी, न बिजली, न भोजन, न ईंधन जैसे स्पष्ट सार्वजनिक बयानों और कैलोरी प्रतिबंध की निरंतर नीति से उल्लंघन। नरसंहार कन्वेंशन 1948। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जनवरी और मई 2024, जुलाई 2025 अंतरिम उपाय, अक्टूबर 2025 सलाहकार राय ने नरसंहार का वास्तविक खतरा और बाद में गंभीर खतरा पाया। दिसंबर 2025 तक ICC अभियोक्ता ने नेतन्याहू और गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट मांगे, स्पष्ट रूप से इस आरोप पर। अनुच्छेद 2C समूह पर जानबूझकर ऐसी जीवन स्थितियां थोपना जिनका उद्देश्य उसका शारीरिक विनाश करना हो, भुखमरी, पानी से वंचित करना, स्वच्छता का विनाश और चिकित्सा देखभाल रोककर। समर्थक सबूतों में मंत्रिमंडल स्तर के बयान, मानव पशु, एक दाना गेहूं नहीं, गाजा मिटा दो, जीवित रहने की न्यूनतम कैलोरी से नीचे निरंतरता और सभी खाद्य उत्पादन साधनों का विनाश, मछली नावें, ग्रीनहाउस, बेकरी, खेत शामिल हैं। प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून नियम 53-56 ICRC अध्ययन नियम 53 नागरिकों को भुखमरी युद्ध का हथियार बनाना निषिद्ध है। नियम 54 जीवित रहने के लिए आवश्यक वस्तुओं पानी के प्लान खाद्य भंडार कृषि क्षेत्र अस्पताल पर हमले निषिद्ध हैं। नियम 55 पक्षों को मानवीय राहत का तीव्र और अबाधित मार्ग अनुमति और सुविधा प्रदान करना होगा। वास्तविक हालात धीमी गति से विनाश का वृत्तांत, उन्होंने इसे पूर्ण घेराबंदी कहा, इसे दबाव कहा, लोगों को मानव पशु कहा और बिना किसी परोक्ष भाषा की घोषणा की कि एक दाना गेहूं भी नहीं गुजरेगा। चरण 1 अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 पूर्ण घेराबंदी। रक्षा मंत्री गैलेंट का 9 अक्टूबर का ऐलान शब्दश शब्द लागू किया गया। हफ्तों तक एक भी ट्रैक नहीं घुसा। कैलोरी 300-600 किलो कैलोरी दिन तक गिरी। दिसंबर 2023 में पहली दस्तावेजी भुखमरी मौतें हुईं। चरण 2 मार्च से मई 2025 पूर्ण नाकाबंदी। जनवरी युद्धविराम टूटने के बाद वित्त मंत्री स्मोत्रिच और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेनफिर ने सभी क्रॉसिंग 11 हफ्ते बंद करवा दी। UNRWA का आटा पूरी तरह खत्म। माओ ने दूषित पानी से फॉर्मूला मिल्क पतला किया। कमाल अद्वान अस्पताल में भुखमरी से मरे बच्चों की पहली सामूहिक कब्र मिली। चरण 3 जून से सितंबर 2025 अकाल घोषित। गाजा प्रांत में IPC फेज 5 घोषित अगस्त 2025। औसत वजन हानि शरीर के 22% तक पहुंची। हर गली में बच्चों की पसलियां दिखने लगीं। इसराइल द्वारा अनुमत एकमात्र राहत हवाई ड्रॉप्स ने जितनों को खिलाया उससे ज्यादा को मार डाला। चरण 4 अक्टूबर से दिसंबर 2025 वह युद्धविराम जो नहीं था। अक्टूबर 2025 समझौते ने 600 ट्रैक प्रतिदिन का वादा किया था। वास्तविक औसत 120-180। रफा क्रॉसिंग ज्यादातर दिन बंद रहा। ईंधन की कमी से अस्पतालों को चुनना पड़ा कि कौन से इंक्यूबेटर चले चलेंगी। दिसंबर तक 100% आबादी IPC फेज 3 या उससे ऊपर बनी रही। माता पिता का हिसाब। कुपोषण विज्ञान क्रूर है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा जोखिम में होते हैं। लेकिन गाजा के माता पिता यह जानते हैं, इसलिए वे एक ही काम करते हैं जो बचा है, वे खुद खाना छोड़ देते हैं। सर्वेक्षण दर सर्वेक्षण लैंसेट 2025 यूनिसेफ 2025 WHO निगरानी 2024-2025 एक ही पैटर्न दर्ज करते हैं। 70-90% वयस्क पूरी तरह भोजन छोड़ देते हैं ताकि उनके बच्चों को एक मुट्ठी चावल या पारदर्शी हो चुके पाउडर मिल्क की एक और घूंट मिल सके। माएं ऐसी हालत में स्तनपान कराती हैं कि उनकी पसलियां उभर आई हैं, बच्चे ने पहला ठोस भोजन खाने से पहले ही कुपोषण विरासत में मिल जाता है। नतीजा दिल तोड़ने वाला उल्टफेर है, गाजा के बच्चों ने अपने माता पिता से कम वजन खोया है क्योंकि माता पिता ने हर रोज रोज थोड़ा थोड़ा मरना चुना ताकि उनके बच्चे थोड़ा और जी सकें। वह चिकित्सकीय दुस्वप्न जिसकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। गाजा के सर्जनों को हजारों बिना एनेस्थीसिया की कटाई करनी पड़ी, उनमें से बहुत से बच्चों की कभी कभी सिर्फ मोबाइल टॉर्च और बारिश के पानी में उबाले गए कुन चाकू से। 50% चलने वाली 4 साल की बच्ची का मरा मांस चीरा जाता है जबकि वह मम्मा चिल्लाती रहती है जब तक दर्द से बेहोश न हो जाए। 6 साल का लड़का पूरी तरह होश में है जब उसकी कुचली हुई जांघ की हड्डी काटी जाती है, वह सर्जन का हाथ पकड़े फुसफुसाता है, इतना दर्द क्यों हो रहा है। किशोरियां सीजेरियन करवाती हैं जिन्हें रिश्तेदार पकड़ कर रखते हैं क्योंकि केटामाइन खत्म हो चुका है। 2023 से गाजा में काम करने वाले हर डॉक्टर एक ही बार बार आने वाले दुस्वप्न का वर्णन करते हैं, वह पल जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक चीखते बच्चे को काटना है और दर्द कम करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। बहुतों ने नींद छोड़ दी, कुछ ने बोलना ही बंद कर दिया। वे अब भी जीवित कैसे हैं? एक चमत्कार का शरीर विज्ञान। सार्वजनिक स्वास्थ्य मॉडलों की हर भविष्यवाणी के खिलाफ गाजा में अभी तक पूर्ण जनसांख्यिकीय पतन नहीं हुआ। इस असंभाव्य जीवित रहने के कई कारण हैं। 1. असाधारण सामाजिक एकजुटता। परिवारों ने आखिरी टुकड़े जोड़े, पड़ोसियों ने एक ट्यूना केन 20 लोगों में बांटा, अजनबियों ने जबरन मार्च के दौरान बुजुर्गों को पीठ पर उठाया। 2. अस्थायी जीवित रहने के तरीके पशु चारा खाना, घास और पत्ते उबालना, तबाह घरों की लकड़ी से समुद्री पानी आसवना, मोबाइल फ्लैशलाइट से सर्जरी करना। 3. जाने से इनकार। पट्टी के 85% हिस्से को अलग अलग समय में खाली करने के आदेश के बावजूद ज्यादातर गाजावासी रुके रहे, आंशिक रूप से क्योंकि कहीं सुरक्षित जगह नहीं थी, आंशिक रूप से क्योंकि जाना मतलब स्थायी विस्थापन था। गाजा के डॉक्टर बार बार आबादी को जीते जागते मुर्दे कहते हैं, जीवित पर बस नाम मात्र को। उपसंहार। सांस लेते शरीरों में लिखा फैसला। 20 लाख इंसान, शिक्षक, कवि, चलना सीखते बच्चे, हर पिछली जन से बच निकली दादियां, 12 दिसंबर 2025 को अब भी सांस ले रहे हैं। यह इस बात का सबूत नहीं है कि नीति मानवीय थी, यह सबूत है कि मानवीय सहन शक्ति के कुछ रूप उन मशीनों से ज्यादा मजबूत हैं जिन्हें उन्हें खत्म करने के लिए बनाया गया था। वे अभी भी यहां हैं, अभी भी जीवित हैं, और उनकी हर सांस एक अभियोग है।